अध्याय दो, अज्ञेय की उपस्थिति। चंद्रकांत बांदेव डेकर। वात्स्यायन जी नहीं रहे। आज के युग में 76 वर्ष की आयु आधी अधूरी तो नहीं मानी जा सकती, लेकिन पिछले कुछ वर्षों की वात्स्यायन जी की विविध स्तरों पर सक्रियता देखते हुए लगता था कि अभी 9-10 वर्ष इसी प्रकार कर्मयोग में जीवन बीतेगा। अतः यह निधन निकट के लोगों के लिए आकस्मिक ही कहा जा सकता है। उनकी मृत्यु की कल्पना का भी अभ्यास नहीं हो पाया था। दुख में सुवर्ण रेखा यही देखी जा सकती है कि अंतिम समय में उन्हें किसी पर निर्भर रहकर अवांछित मृत्यु नहीं मिली। आजीवन अज्ञेय जी स्वाधीन ही रहे, लेकिन यह संतोष मन को बहलाने का बहाना भर है। शेखर एक जीवनी में शेखर खोज करता है अपने जीवन की मूलभूत प्रेरणाओं की। इस आत्मान्वेषण के सिलसिले में जिन सूत्रों को उसने पाया, वे और अज्ञेय के जीवन के सूत्र भी लगभग यही थे। इससे अधिक घटना प्रसंगों का और अज्ञेय के व्यक्तिगत जीवन का सामने देखना अतिरिक्त उत्साही होगा। निरंतर अपनी आत्मा को स्वाधीनता के लिए सजग रखना, स्वाधीनता का दायरा बढ़ाना, हर प्रकार के भय से अपने को ऊपर उठाना आदि प्रवृत्तियों, हिंसा और काम को अनुशासित कर व्यक्तित्व विकास की राह में मोड़ देना, करुणा की आर्द्रता से जीवन को देखना, भोग के अतिरेक के साथ विरक्ति के अतिरेक से भी बचकर समृद्ध जीवन जीने की भरसक कोशिश करना और अपने चुने हुए क्षेत्र में कार्यरत रहते हुए आंतरिक उमंग, उल्लास और आनंद से समस्त जीवन को झोंक देना, ये कुछ ऐसे तत्व थे जिनसे अज्ञेय जी का समूचा व्यक्तित्व संगठित हुआ था। फिर भी अज्ञेय जी एक विवादास्पद व्यक्ति रहे। अज्ञेय के विचारों से पूर्णतः विरोध करने वाले और विचार विरोध को समस्त व्यक्तित्व विरोध का पर्याय समझने वालों के लिए विवादास्पद रहे ही। कभी कभार उनके साथ वैचारिक सहमति रखने वालों के लिए भी कुछ मामलों में वे निगूढ़ रहे, अज्ञेय रहे। यह मानना कि कोई व्यक्ति पूरी तरह समझ में आ जाए, अपनी समझ की क्षमता पर अतिरिक्त विश्वास है, खासकर आज के युग में जब मनुष्य का मन जटिल हुआ है। इसलिए मानव स्थितियां भी जटिल हो गई हैं। परिवेश एक व्यक्ति से हजारों तरीके से प्रतिक्रिया की मांग करता है और व्यक्ति कि एक ही प्रतिक्रिया से हजारों देखने वाले हजारों तरह के निष्कर्ष निकालने के लिए तैयार बैठे हैं। फिर भी व्यक्ति जितना बड़ा है, उतना आज के सार्वजनिक गपबाजी के युग में उसको लेकर सच झूठ का आडंबर भी बढ़ा है। ऐसे में किसी भी व्यक्तित्व के बारे में वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन का दम भरना असंभव है। केवल अपनी दृष्टि से ही अपने अनुभव की बात कही जा सकती है। फिर लेखक को, खासकर जिसके व्यक्तित्व के प्रति कुछ सम्मोहन भी है, भीड़ से अपने को बचाए रखने के लिए एकांत में भी रहना पड़ता है और अपने लेखन के माध्यम से लोगों के बीच उपस्थित भी रहना पड़ता है। यह आज के युग के बड़े लेखक की व्यवस्था है। पाठकों को इसका ध्यान रखना चाहिए। वात्स्यायन जी में कुछ बातें ऐसी थीं जिसके कारण वे कुछ निगूढ़ प्रतीत होते थे। संभवतः वे उन विरल व्यक्तियों में से थे जो अपने वैयक्तिक दुख का किसी के साथ साझा नहीं करना चाहते। संभवतः स्वयं अज्ञेय ने भी कभी किसी के वैयक्तिक जीवन के बारे में विशेष रुचि दर्शाई हो, ऐसा उदाहरण भी मिलना मुश्किल है। वे जिस तरह अपने नितांत निजी व्यथा को स्वयं सहना, पचाना, उससे ऊपर उठना, तटस्थ हो जाना एक खास वैयक्तिक बात समझते थे, उसी तरह दूसरों की प्राइवेसी में दखल देना शायद अशिष्टता मानते थे। अज्ञेय ने शायद ही किसी मित्र से शादी विवाह, बाल बच्चे, नौकरी आदि के बारे में पूछा हो और शायद ही किसी से अपने परिवार के संबंध की, जब तक बाध्यता ना हो, जानकारी दी हो। सामान्य जन की दृष्टि से इसको औपचारिक रहने की एक सीमा माना जा सकता है। अज्ञेय में दुख को पचाना एक अभ्यास बन गया था, वह शारीरिक हो या मानसिक। हौलते दूध का नौकर की किंचित लापरवाही से हाथ पर गिर जाने पर भी वे सी तक नहीं करते थे। उसी तरह आंतरिक स्नेह से गहरे स्तर पर जुड़े व्यक्ति की मृत्यु की वार्ता सुनकर तीव्र मानसिक आघात के क्षण को चुपचाप झेल लेते थे। लोगों को यह हृदयहीनता का लक्षण लग सकता है, लेकिन यह एक गहन अनुशासन था। किसी भी स्तर पर भावुकता का प्रदर्शन उनको वल्गर लगता, आत्मा की पवित्रता पर दाग लगता था। अपनी सुविधा के लिए किसी को कष्ट न हो, इसका आग्रह संभवतः हठ की सीमा तक अतिरेकपूर्ण था। बोलने में व्यावहारिक विषयों का दखल जब संभव नहीं था, तब यह भी स्वाभाविक था कि आसपास के लोगों को यह खीज हो कि आखिर बोला किस विषय पर जाए। उनका मौन उनके लिए सहज स्वभाव की बात थी, परंतु औरों के लिए वह असमंजस की खीज और बोझ की बात होगी। पहली बार जब अज्ञेय हमारे घर आए तो घर से वापस टैक्सी में हम जा रहे थे। मैं कुछ बोलता था, फिर मौन, फिर एकाध प्रश्न, नपातुला उत्तर, फिर मौन, फिर एकाध प्रश्न, छोटा सा उत्तर। उनके निवास स्थान पर पहुंचने के बाद कुल अनुभव पर गहरी प्रसन्नता उन्होंने व्यक्त की। मैं अंदर से पुलक उठा, उसे टैक्सी में बैठकर वापस आ रहा था। टैक्सी वाले ने पूछा, साहब कौन साहब बैठे थे? मैंने कहा, भारत के बहुत बड़े राइटर थे। टैक्सी वाले ने सीधी प्रतिक्रिया व्यक्त की, साहब राइटर बहुत बड़े हों लेकिन घमंडी बहुत लगते हैं। मैंने कुछ अंदर से खींच कर लेकिन बाहर से उत्सुकता से पूछा, क्यों भाई, तुम्हारे साथ तो ऐसी कोई हरकत उन्होंने नहीं की? साहब बात ऐसी है, आप पूरे घंटा भर उनसे बात करते जा रहे थे, वो साहब तो धुन्ने की तरह चुप बैठे थे। खींच के बावजूद मुझे हंसी आ गई। जो समय मेरे लिए उत्कट आनंद का था, शायद वात्स्यायन जी के लिए प्रसन्नता का था। टैक्सी वाले की दृष्टि से उनका भाष्य कितना भिन्न था। वात्स्यायन जी में मौन के साथ अजीब प्रकार का संकोच था। बंबई में जब भी हमारे घर आते, हमारे लिए वह एक उत्सव का अवसर होता था, लेकिन वात्स्यायन जी एक ही कुर्सी पर बैठे रहते 3-4 घंटों तक। जब तक बार बार पूछा नहीं जाए कि क्या कोई तकलीफ तो नहीं है, वे उसी प्रकार बैठे रहते। वे जानते तो थे कि हमारे यहाँ दुराव संकोच अनावश्यक है, लेकिन एक विचित्र संकोच उनके स्वभाव में था। हमारे परिवार में उनको निश्चय सुख मिलता था, वह शब्दों से कम व्यक्त होता था, मुद्रा से छलकता अवश्य था। एक बार उनके साथ वीरेंद्र जी थे। वीरेंद्र जी ने कहा, लीला जी आज पूरा दिन आपने हमारी सुविधा का इतना ख्याल रखा, ऐसा प्रबंध किया। अज्ञेय ने एक ही वाक्य कहा, इसके लिए कितना परिश्रम रहा होगा रहा है। वाक्य लीला के लिए एक अद्भुत टॉनिक था। इधर जुड़ी है उसके साथ एक गहन वेदना, टीस और चुभन, अज्ञेय को वह शठलाती दीठ अनुपस्थित होने की। एक घटना याद आ रही है। नागार्जुन जी हमारे घर आए थे। हिंदी के जिन कवियों को मैं मन से प्यार करता हूँ, उनमें नागार्जुन भी एक हैं। बात ही बात में अज्ञेय जी को लेकर प्रसंग चला। नागार्जुन ने एक अनुभव बताया, भाई वह तो अद्भुत व्यक्ति है, लोग उसे अहंकारी कहते हैं लेकिन अहंकार उसमें है नहीं। वह तो ऐसा व्यक्ति है कि तुम उसके सामने बैठकर गलियां सुनाओ, वह प्रतिवाद नहीं करेगा। असह हुआ तो स्थान से उठकर चला जाएगा, लेकिन अपनी जीभ को भ्रष्ट नहीं करेगा। मैंने कुछ और जिज्ञासा व्यक्त की। नागार्जुन ने अपनी बात कही, भाई दूसरे सप्तक में मुझे शामिल करने की बात थी। पत्र मिला, बड़ा विनम्र निमंत्रण, संतुलित अनुरोधपूर्ण, लेकिन कुछ जवानी का जोश, कुछ विचारधारा का अतिरिक्त आग्रह। किसी मित्र ने कुछ उत्तेजित भी किया था, मैंने इनकार तो कर ही दिया। उसके पास जाकर बड़ी भर्त्सना करके भी आया, लेकिन उस व्यक्ति ने प्रतिवाद में एक कठोर शब्द भी नहीं कहा। चेहरे से पता चल रहा था कि मेरे वाग वाणों से कष्ट हो रहा है, लेकिन शब्द एक भी बाहर नहीं निकला। मैंने पूछा, नागार्जुन जी आज कैसा लग रहा है? सच कहूँ तो बड़ा दुख लग रहा है, इस बात का नहीं कि सप्तक में नहीं गया, इस बात का कि एक भले आदमी का मन दुखी किया किसी के उकसाने पर। शब्द मेरे हैं, आशय नागार्जुन का है। इस बात का जिक्र मैंने अज्ञेय से किया। अज्ञेय ने कुछ भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, मुस्कुराकर टाल गए। मुझे याद नहीं अज्ञेय ने कि उस लेखक का पर्दाफाश करने में असलियत जानने में कभी उत्सुकता दिखाई हो, खुद भी किसी व्यक्ति के बारे में कुछ कटुता व्यक्त की हो। केवल एक अपवाद है, वह है वैयक्तिक बात उतनी नहीं है, वह ऐतिहासिक प्रसंग की बात है। एक इतिहास के प्रसंग में वैयक्तिक धोखाधड़ी की भी बात है। इस प्रसंग में उन्होंने कुछ कटुता व्यक्त की थी। चूंकि अब वह व्यक्ति भी नहीं है और अज्ञेय भी नहीं है, इसको लेकर वितंडावाद नहीं उठाना चाहता। विचार से विरोध, विरोधी विचार वाले व्यक्ति से विरोध नहीं, यह भी अज्ञेय के शील का एक महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य रहा है। एक छोटी घटना की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, क्योंकि व्यक्तित्व ऐसी छोटी घटनाओं से ही अधिक ईमानदारी से व्यक्त होता है। पुणे विश्वविद्यालय का एक छात्र अज्ञेय पर PhD कर रहा था। अज्ञेय जी के प्रति आरंभ में उसमें लगाव कहाँ तक था इसका पता नहीं, परंतु जैसे जैसे अज्ञेय के साहित्य का गहराई में पठन करता गया, वैसे अज्ञेय में श्रद्धा बढ़ती गई। अज्ञेय ने उसकी निर्मलता, निष्पापता और लगन देखकर काफ़ी सहायता की। अज्ञेय ने उसे काफ़ी समय दिया, लेकिन यह भी बताया शोध कार्य में श्रद्धा नहीं वस्तुनिष्ठ आकलन चाहिए। उस शोध छात्र को अज्ञेय जी ने कुछ अपने घर टिकाया भी, उसकी जिज्ञासाओं का समाधान भी किया। उससे यह कहा, तुम उनके पास भी जाओ जिनके पास मेरे साहित्य को देखने का एक दूसरा दृष्टिकोण मिलेगा। हो सकता है कि वह तुम्हें एकांगिकता से बचाएं। तुम शोधार्थी हो, भावना से नहीं संतुलन से काम लेना चाहिए। तुम डॉक्टर नामोर सिंह, डॉक्टर केदारनाथ सिंह और विष्णु खरे से अवश्य मिलो। मुझे एक बात और याद आ रही है, अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने के पहले एक व्यक्ति ने उसका घोर विरोध किया, लेकिन अज्ञेय ने उस व्यक्ति के प्रति कटुता नहीं बरती, उसको यथासंभव सहयोग भी दिया। मैं सोचता हूँ कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार को लेकर विरोध करने वाले व्यक्ति का विरोध न करना, न उसके प्रति कोई कटुता रखना व्यक्तित्व की अलौकिकता का सबूत है। वात्स्यायन जी अनेक दोषों के बावजूद संसदीय प्रणाली को उपयोगी मानते थे, और संसदीय प्रणाली के मूल में कहीं विरोध को महत्वपूर्ण मानना और प्रतिष्ठा की बात है। अज्ञेय में यह जनतंत्रवादी शील का बहुत बड़ा वैशिष्ट्य मौजूद था। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नंद किशोर आचार्य, डॉक्टर रमेश चंद्र शाह अज्ञेय के काफ़ी निकट रहे हैं। डॉक्टर राम कमल रॉय, शीन कॉफ निज़ाम और रमेश मेहता भी काफ़ी निकट आ गए थे। विद्या निवास मित्र तो उनके सर्वाधिक अंतरंग मित्र थे। मेरा विश्वास है कि इनमें से किसी एक के पास एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलेगा कि अज्ञेय ने किसी व्यक्ति को लेकर कटुता की बात कही हो। अपने मित्रों के प्रति उनमें एक आस्थापूर्ण आत्मीयता अवश्य रहती थी। आप उस शिविर में विजय देव नारायण शाही आए थे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना भी आए थे। शिविर समाप्ति के बाद चर्चा चल रही थी। वात्स्यायन जी गहरी चिंता में व्याकुल होकर बोले थे, सर्वेश्वर जी अभी सावधान नहीं हुए तो? उनके चेहरे को देखकर मैंने पूछा, तो उन्होंने बड़ी उदासी से कहा, मुश्किल है, 2 वर्ष अधिक नहीं चल पाएंगे। मैंने उन्हें बहुत परेशान देखा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अज्ञेय जी ने सक्सेना जी को प्रत्यक्षतः कभी सावधानी के लिए कहा हो। वे कहीं गहरे में मानते थे कि ऐसी बातों में कहने सुनने से कुछ नहीं होता, एक दूसरे का अपने जीवन का निर्णय लेने का अधिकार वे यहाँ तक मानते हैं कि अमुक करो अमुक मत करो। ये किसी बात किसी से कहना उनको शायद दूसरे के व्यक्तित्व पर आक्रमण करना लगता था। वे अपने सामने बैठे हुए व्यक्ति का सम्मान करते थे, फिर वह व्यक्ति लेखक हो या न हो। हाँ, उनकी अत्यधिक मौन रहने के स्वभाव से उपस्थित व्यक्ति कष्ट पाया हो तो दूसरी बात है। मुझे घटना याद आ रही है, शायद 1975 की बात है। अज्ञेय जी बम्बई आए थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। एक बार शायद 1972 के आसपास दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले में मैंने उनको पहली बार देखा था। अज्ञेय जी ने फ़ोन पर निवास स्थान पर बुलाया। मेरे लिए सुखद आश्चर्य था, लेकिन भीतर बड़ा संकोच भी था। मैं वीरेंद्र कुमार जैन के साथ उनसे मिलने गया, बातें बहुत ही कम हुई। अज्ञेय जी अपने छोटे कैमरे के साथ कुछ करते रहे। मैंने कुछ व्यंग से पूछा, अज्ञेय जी लगता है कैमरा आज कुछ ज़्यादा ही तकलीफ दे रहा है। मुझे अज्ञेय जी के मृदुभाषी होने की बात तो मालूम थी, लेकिन उसका असली मर्म उस समय ज्ञात न था। अज्ञेय जी ने कैमरा तो दूर रखा, कुछ बातें हुई भी, साथ में वीरेंद्र भाई थे अतः विषयों की कमी नहीं थी। लेकिन इतने में अगेजे ने धड़ाधड़ 3-4 तस्वीरें ली। मैं कुछ लज्जित हुआ। उनके मौन का एक और किस्सा। अगेजे बड़े भाई से मिलने गए थे। बड़े भाई ने दरवाज़ा खोला, जरा सा होठ को बिलगा कर स्वागत किया। आए आइए। बस फिर इतने दिनों बाद मिले तो भाइयों में 5-6 घंटे में मुश्किल से 2-4 वाक्यों का संभाषण हुआ। लेकिन इस बीच वात्स्यायन जी के लिए भाई साहब ने वही चाय पिलाई जो उनको बहुत पसंद थी, वही चीज़ें भोजन बनी जो वात्स्यायन जी को प्रिय थी। इस बीच स्वयं भाई ने थैलियाँ सी कर भेंट वस्तुएँ भी उनमें रखी। जाते समय, अच्छा हम चलते हैं, अब देखें कब आना होता है। बड़े भाई ने भी मौन में ही विदा दी। मुझे एक किस्सा याद आ गया। महाराष्ट्र में दो संत एक दूसरे से काफ़ी दूर रहते और एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत व्याकुल थे। आखिर लंबी दूरी तय करके एक दूसरे से रूबरी हो गए। बोले कुछ भी नहीं, एक दूसरे का हाथ हाथ में लेकर घंटों बैठे रहे और विदा हो गए। एक मौन के माध्यम से किया हुआ उत्कट संप्रेषण था। अज्ञेय जी के मौन का परिचय धीरे धीरे हो गया। झेलने की ताकत भी आई। मौन को तोड़ने के लिए विषय, प्रश्न, जिज्ञासाएँ क्या हो सकती हैं, इसका भी कुछ अनुमान हुआ। उनको लेकर हमारे घर में आदर और भक्ति से ही बातें होती थी। हमने उनको प्यार से किंचित शरारतपूर्ण नाम भी दे रखा था, मौनी बाबा। इस मौनी बाबा के साथ रहने में किसी व्यक्ति को क्या कुछ झेलना पड़ा होगा, इसकी कल्पना ही कर सकता हूँ। मौन अज्ञेय जी के लिए एक आवश्यक बात थी। अगर वे अपने शिष्यों का दरबार लगाते तो निश्चय ही 10वां हिस्सा भी काम न कर पाते जितना कर चुके हैं। हम लेखन युग में जी रहे हैं, लेकिन अपेक्षाएं कुछ पुराने युग की हैं। हम लेखक को उसके लेखन के माध्यम से मिलने की अपेक्षा प्रत्यक्ष उसके समय पर, शक्ति पर कब्जा करना चाहते हैं। और कोई लेखक अपने समय को बचाना चाहता है तो हमारे लिए वह एकांत प्रिय व्यक्तिवादी बन जाता है। अज्ञेय जी प्रतिकूल समीक्षा में विचारणीय अंशग्रहण करते थे, लेकिन प्रभावित बहुत नहीं होते थे। अनुकूल समीक्षा से भी संतुष्ट होते थे, लेकिन उसका भी महत्व तभी मानते थे जब समीक्षा में तर्क का बल हो, विश्लेषण का पैनापन हो, तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा न हो, आँख ओट न किया हो। उनके प्रति अनुकूल लिखकर उनकी निकटता पाना मुश्किल था, प्रतिकूल लिखकर उन्हें विचलित करना और भी मुश्किल था। इसका कारण यह था कि अपनी क्षमता के प्रति उनमें जबरदस्त आत्मविश्वास था। विरोध के पीछे वे तर्क का बल तो देखते ही थे, यह भी देखते थे कि विरोध के मूल में बौद्धिक लगाव या प्रतिबद्धता है, ईमानदारी है या केवल ईर्ष्या, वैयक्तिक राग द्वेष, पूर्वग्रह अथवा विशिष्ट विचारधारा के प्रति समर्पण। अगर ऐसा ही है तो इदम न मम कहकर उपेक्षा कर जाते थे। अपनी शक्ति के प्रति भरोसा था, उसे अहंकार कहना गलत होगा। हाँ, झूठा विनय भी उनमें नहीं था। कई बार वे भूल चुके थे। हिंदी जगत में सबसे अधिक विरोध हुआ मेरा या जैनेन्द्र का, लेकिन उससे क्या हुआ, हमारा क्या बिगड़ा। इस आत्मविश्वास के परिधार से विरोध के झेलने का संबल उनको प्राप्त होता था। हाँ, उन्हें तब दुखी मैंने देखा है जब किसी निकट के मित्र ने विरोध के लिए साहित्य का क्षेत्र छोड़कर व्यक्तिगत चारित्र को लेकर सार्वजनिक प्रश्न उठाए हैं। वात्स्यायन जी ने एक पत्र में लिखा था, वैसे उनके पत्र बहुत कम आते थे, पत्रों में वैयक्तिक स्पर्श बहुत ही क्षीण रहता था, किंतु विलक्षण विनम्रता और पढ़ने वाले के प्रति आदर भाव से लिखे गए होते थे। मुझे हिंदीतर प्रांतों में सही ढंग से समझा गया है। एक घटना का जिक्र यहाँ आवश्यक है। वात्स्यायन जी सांगली में संपन्न एक द्वैभाषिक गोष्ठी के लिए आए थे। वहाँ उन पर सीधे या अप्रत्यक्षतः शाब्दिक आक्रमण हुए। वात्स्यायन जी ने इसका प्रतिवाद नहीं किया, समापन के भाषण में एक व्यंग अवश्य किया। नोटकमा, यहाँ सुना है कि सांगली के निकट गाड़गापुर में मनुष्य के शरीर में आने वाले भूतों को उतारा जाता है। संगोष्ठी में भी कुछ लोगों पर चढ़े भूत उतर जाते हों तो संगोष्ठी के लिए एक विशेष सफलता है। नोटकमा, श्रोताओं ने संकेत समझकर भरपूर तालियां बजाकर अपनी सहमति व्यक्त की। निरपवाद रूप में श्रोता आज्ञे के सम्मोहन में रहे। आभार मानते हुए सांगली कन्या महाविद्यालय के अध्यापक ने अज्ञे को ऋषितुल्य महापुरुष कहकर संबोधित किया। तब संगोष्ठी के सभी श्रोता वर्ग की भावना को ही वे वाणी दे रहे थे। इसी सांगली में 2 वर्ष पूर्व प्राचार्य हानकण गलीकर अंग्रेजी के प्राध्यापक एवं विलिंगडन कॉलेज के प्राचार्य की अध्यक्षता में यज्ञ के कृतित्व पर मेरा व्याख्यान हुआ था। अध्यक्षीय भाषण करते हुए मेरे भाषण की सफलता का धन्यवाद देते हुए प्रोफेसर हानकण गलीकर ने यह संदेश अवश्य प्रकट किया था कि जितना बहुआयामी व्यक्तित्व और इतना समृद्ध साहित्य हो सकता है सुभी हिंदी में, लेकिन सांगली की संगोष्ठी के बाद स्वास्थ्यायन जी के 3-4 भाषण हिंदी और अंग्रेजी में हुए। भाषणों में प्रोफेसर हानकण गलीकर उपस्थित थे। कुछ दिन बाद जब उनसे भेंट हुई तब उन्होंने मेरे सांगली में भाषण का संदर्भ देते हुए कहा कि बंदेव डेकर जी, यह तो सचमुच ही महान व्यक्तित्व है। 2 वर्ष पूर्व बम्बई के विश्वविद्यालय में टैगोर चेयर के तत्वधान में अज्ञेय जी का व्याख्यान और कविता पाठ हुआ। बम्बई विश्वविद्यालय का वह ऑडिटोरियम खचाखच भरा था और कविता पाठ के उपरांत अनेक विद्वानों लेखकों ने आकर अपनी गहरी संतृप्ति व्यक्त की। इसके पूर्व टाटा थिएटर के छोटे हाल में भी वात्स्यायन जी का 1 घंटे का कविता पाठ हुआ था और मराठी के प्रख्यात लेखक ज्ञानेश्वर नाडकर्णी ने 2 दिन के टाइम्स ऑफ इंडिया में काव्य पाठ की सफलता पर गहरा संतोष व्यक्त करते हुए कुछ कविताओं पर मार्मिक टिप्पणियां भी की थी। श्रोताओं में मराठी के सशक्त कवि और लेखक भी बैठे थे। मुझे याद आता है सांगली से लौटते समय अज्ञेय जी ने पुणे विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की ओर से आयोजित सभा में भाषण दिया था। अपराह्न 2:30 बजे के उस कार्यक्रम में खेल वांगमय भवन का बड़ा हाल इतना भरा था कि कितने ही लोगों को खड़े होकर व्याख्यान सुनना पड़ा। पुणे के प्रतिष्ठित अखबारों में बहुत उत्साह के साथ सभा का विवरण दिया गया था। गुजराती में डॉक्टर भोलाभाई पटेल ने तो वात्स्यायन जी पर ग्रंथ ही लिखा है। गुजराती के जाने माने लेखक डॉक्टर रघुवीर चौधरी भी अज्ञेय के साहित्य के मर्मज्ञ पाठक हैं। आबू शिविर से लौटते समय उन्होंने गुजराती साहित्य परिषद की ओर से वात्स्यायन जी का कविता पाठ रखा था, जिसमें गुजराती के बहुत से लेखक उपस्थित थे। अहमदाबाद से कुछ छात्राएँ अज्ञेय पर शोध कार्य कर रही थी, वे मुझसे मिलने आई थी। चर्चा के दौरान मुझे लगा कि सचमुच वात्स्यायन जी को पूरी गहराई के साथ उन्होंने पढ़ा और समझा है। उनकी पकड़ अच्छी थी, जिज्ञासाएं प्रामाणिक और निष्पक्ष थी। असल में लेखक को उसके लेखन के माध्यम से ही देखना चाहिए। यद्यपि सिद्धांत यह माना जा सकता है प्रतिभा के अद्भुत सक्रिय क्षण में लेखक के लौकिक अनुभव का साहित्यिक अनुभव से सीधा रिश्ता नहीं रहता, फिर भी काव्यानुभूतियों से कवि व्यक्तित्व को पकड़ा जा सकता है और कुछ अपवाद को छोड़ दें तो कवि व्यक्तित्व का और लौकिक व्यक्तित्व का संबंध सामान्यतः जुड़ा हुआ ही रहता है। इस संदर्भ में मैं अज्ञेय की कविता को उद्धृत करने का मोह संवरण नहीं कर सकता। यह कविता अनेक आयामी है और उसमें से अनेक अर्थ निकल सकते हैं। कविता की रचना प्रक्रिया पर भी यह बात लागू हो सकती है, लेकिन मुझे यहाँ उसकी अविधा में ही स्वीकार्य है। मैंने पूछा, क्या बना रही हो? उसने आँखों से कहा धुआं पोंछते हुए, मुझे बना क्या बनाना है, सब कुछ अपने आप बनता है, मैंने तो यही जाना है। कह लो मुझे भगवान ने यही दिया है। मेरी सहानुभूति में हट था, मैंने कहा कुछ तो बना रही हो, या जाने दो न सही, बना नहीं रही, क्या कर रही हो? वह बोली, देख तो रहे हो, छीलती हूँ, नमक छिड़कती हूँ, मसलती हूँ, निचोड़ती हूँ, ओढ़ती हूँ, कसती हूँ, फोड़ती हूँ, फेंटती हूँ, महीन बिनारती हूँ, मसालों से सवारती हूँ, देगची में पलटती हूँ, बना कुछ नहीं रही, बनता जो है यही सही है। अपने आप बनना है, पर जो कर रही हूँ एक भारी पेंदे मगर छोटे मोह की दोगुची में सब कुछ झोंक रही हूँ, दबा कर अटा रही हूँ, सीजने दे रही हूँ। मैं कुछ करती भी नहीं, मैं काम सलटती हूँ, मैं जो परोसूंगी जिनके आगे परोसूंगी उन्हें क्या पता है कि मैं अपने साथ क्या किया है। इसमें जो गृहस्थी जीवन की वेदना, त्याग, निर्माण का, स्वयं के मिले और दूसरे के बनाने का समग्र चित्र है, और समग्र चित्र इतने स्नेहपूर्ण उष्ण शब्दों से रचा हुआ है कि जिसने प्रतिभा के द्वितीय क्षण में ही क्यों न हो यह व्यथा, यह करुणा, यह सहानुभूति और समझ अनुभव की है। उसकी धुंधली छाप भी लौकिक क्षणों में रह पाए तो कितना बड़ा व्यक्तित्व परिष्कार है। फिर वह वस्तुव्यक्ति प्रसंग की ओर करुणा प्रेरित कोण से देखने की दृष्टि बिना लौकिक व्यक्तित्व की गहन संवेदनशीलता के पैदा ही नहीं हो सकती। और मेरा अनुभव है कि अज्ञेय के लौकिक जीवन में भी वह करुणा और समझ का स्पर्श बड़ा तीव्र था। उनकी अनेकानेक कविताओं में यह मानवीय स्पर्श इतना प्रबल, गहरा और तरल है कि अनुभव को मूलतः पकड़ने वाला संवेदनशील मन लौकिक जीवन में भी उसकी आर्द्रता से कैसे वंचित रह सकता है। उनके निकट रहने का सौभाग्य जिनको मिला है वे इस बात की दुहाई अवश्य देंगे। आठवें दशक की कविता का एक वैशिष्ट यह बताया जाता है कि उसमें सामान्य जीवन के छोटे छोटे प्रसंगों से मानवीय संवेदना की सीधी और निश्चल अनुभूति व्यक्त हुई है। असल में वात्स्यायन जी के काव्य में बहुत पहले से यह वर्तमान है। अगर कोई अपना नितांत सामयिकता का चश्मा उतार कर देखे तो आसानी से दिख सकता है। लेकिन जब एक तरफा प्रचार ही करना है तो कोई उनके प्रणय काव्य का ही उदाहरण बार बार प्रस्तुत करता है तो कोई अभिजात से युक्त कविता का। असल में इतिहास को सर्वाधिक महत्व देने वाले विद्वानों द्वारा जब ऐतिहासिक प्रमाणों को समग्रता में नहीं एकाग्रता में देखा जाता है, इतिहास को वस्तुनिष्ठता में न देखकर प्रचार के लिए एक तरफा देखा जाता है, तब यही तथ्यपरक दृष्टि अर्जित करना कठिन है, इसका दुखद अनुभव होता है। वात्स्यायन जी जमाने में देश की स्वाधीनता की लड़ाई में सक्रिय रहे और फांसी की सजा से हिंदी साहित्य के सौभाग्य से बचे। द्वितीय महायुद्ध के दौरान जीवन मरण की चुनौती स्वीकार कर सेना में भर्ती हुए। वात्स्यायन जी ने लड़ाई शब्दों से ही केवल नहीं लड़ी, मृत्यु का सामना करने का अवसर जब आया तब सामना भी किया, पीछे नहीं हटे। इधर साहित्य और समीक्षा में लड़ाई शब्द बहुत इस्तेमाल हो रहा है। लगता है कि सारी लड़ाई शब्द के सहारे ही लड़ी और जीती जा सकती है। लेकिन स्वाधीनता के बाद अपनी जेल यात्रा का कोई लाभ उन्होंने नहीं उठाया। इतना ही नहीं, जहाँ बड़े से बड़ा विद्रोही हथियार डालता है वहाँ सिक्योरिटी के लिए नौकरी के क्षेत्र में भी वात्स्यायन जी ने अपने को लगातार दांव पर लगाया। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी भी राजनीतिक पुरुष के हाथ से नहीं, बिस्मिल्ला खां जैसे कलाकार के हाथ से स्वीकारने की शर्त रखी। दुर्गम यात्राओं में प्राण संकटों से रूबरू हुए, लेकिन कहीं भी उसका पूंजी के रूप में इस्तेमाल नहीं किया। वे व्यवस्था विरोधी रहे और यह व्यवस्था विरोध शब्द से अधिक प्रत्यक्ष आचरण से किया। ध्यातव्य है आपातकाल के बाद जो पहला वत्सल निधि शिविर अबुआ में हुआ, उसकी अध्यक्षता के लिए उन्होंने आपातकाल में सरकारी निमंत्रणों का हर क्षण प्राणपण से विरोध करने वाली महाराष्ट्र की विख्यात लेखिका श्रीमती दुर्गा भागवत को आमंत्रित किया, लेकिन उसको कहीं भी एक्सप्लाइट नहीं किया। असल में एक कलाकार के आत्मसम्मान और गौरव को किसी भी क्षण उन्होंने क्षति पहुंचाने नहीं दी, बल्कि मैं कहूंगा कि एक लेखक या कलाकार आज के युग में अपनी बिरादरी की शान कैसे बढ़ा सकता है, इसका एक मार्ग उन्होंने प्रस्तुत किया। लड़ाई, जूझ, संघर्ष, युद्ध आदि शब्दों का प्रत्यक्ष इस्तेमाल उन्होंने बहुत कम किया, लेकिन अपनी संवेदना और काल पिछले अर्थ में समसामयिकता की अनुगूंज नहीं के बीच बराबर गति और संगति रखने का कलाकार की लड़ाई वे लड़ते रहे। इसमें उत्तरोत्तर साहित्य की समस्याएं भी पैदा होती गईं। अपनी लेखक बिरादरी के आत्मसम्मान को धारदार रखने की लड़ाई, अपने पाठकों की आंतरिकता को विस्तार और गहराई के सौंदर्य बोध से समृद्ध करते रहने की लड़ाई, उसके भीतर हर क्षण स्वाधीनता की कीमत मांगने वाले परिवेश के साथ लड़ाई, पाठकों तक अपने को संप्रेषित करते रहने की लड़ाई, मृत्यु के क्षण तक जीवन को समग्र आयामों में जीने की लड़ाई, हर प्रकार की सक्रियता से जड़ता को भेद कर जीवन बोध को अधिक उत्कट, तीव्र और सार्थक रखने की लड़ाई, अंतिम कविता संग्रह, ऐसा कोई घर आपने देखा है मृत्यु के 6-7 महीने पहले प्रकाशित हुआ, अंतिम अप्रकाशित रचना जो धर्मयुग में प्रकाशित हुई वह मृत्यु के कुछ दिन ही पहले लिखी हुई, मरुपर कविताओं की सशक्त काव्य श्रृंखला भी अप्रकाशित है। यह कलाकार, साहित्यकार और सांस्कृतिक चिंतक की लड़ाई का क्षेत्र है। इसमें शत्रु पर प्रहार करने के पहले अपनी आत्मा को जड़ित करने वाली आंतरिक और बाह्य ताकतों से लड़ना पड़ता है और शतशः आत्मबुद्धि भी होना पड़ता है। इस रूप में आज्ञेय का जीवन एक निरंतर लड़ाई का जीवन था। स्वतंत्रता के लिए लड़ना बहुत कठिन होता है। विचारों की स्वतंत्रता के लिए और भी कठिन और व्यक्तित्व को जड़ित करने वाली शक्तियों के विरोध में आत्मा की स्वाधीनता के लिए लड़ते रहना महाकठिन होता है। मैं अज्ञेय को इस योद्धा के रूप में देखता हूँ। किसी के कर्तृत्व की नाप तोल का अधिकार लेने के पूर्व अपने गिरा में झांकना, गरिमा में झांकना आवश्यक है। हमने भी कोई लड़ाई लड़ी है? कौन सी है? शब्द या कृति? यीशु का यह प्रश्न पापी पत्थर उठाने के पूर्व विश्वास कर लेना चाहिए कि हमारे हाथ से तो कोई पाप नहीं हुआ है। इससे और कुछ हो जाए तो हो जाए। आक्रामक तेवर में थोड़ा सा अवरोध, थोड़ी सी हिचक, जरा से ठेस भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। वात्स्यायन जी नहीं रहे, उनकी उपस्थिति फिर भी शक्तिशाली रूपों में हमारे बीच है। उनकी लिखी ग्रंथ संपदा, उसके निष्पक्ष पठन से उनकी उपस्थिति का गहरा एहसास हम कर सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि उनके द्वारा निर्दिष्ट जीवन मूल्यों का आचरण अनुकरण हम करें। यह गे जैसा स्वाधीन चेता यह चाहेगा ही नहीं। उनके विचारों का अतिक्रमण भी आवश्यकतावश किया जा सकता है और उनका गौरव ही होगा, क्योंकि विचारों, जीवन मूल्यों और आचरण के मानव से अधिक गतिशील और सृजनशील जीवन का मूल स्रोत व्यक्तित्व की स्वाधीनता को बनाए रखना उनका गौरव है। स्वाधीनता और आत्मा के प्रति ईमानदारी उनके जीवन परिप्रेक्ष्य के महत्वपूर्ण आधार बिंदु है। उनकी कितनी ही कविताएं जीवन की अनेक स्थितियों में आत्मिक दृढ़ता का साधन बनती हैं, संबल बनती हैं। आज अभी इस क्षण उनकी यह आवाज़ गहन दिलासा दे रही है। लेकिन फिर आऊंगा मैं भी, लिए झोली में अग्नि बीज धरेगी जिसको धरा ताप से होगी रत्न प्रसूत। कभी गाता है अनुभव नहीं, नहीं आज्ञा आकांक्षा, गाता है वह अनग सनातन जी।